माधव जय कुंज बिहारी।
किताब किताब हरि बोल किताब
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर यशोदानंदन जय गज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी। जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा।
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समय समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय, श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय, गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरियस सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। किताब किताब कहाँ है? सब लोग मेरे पीछे बोले ओम। ये तो दूसरी किताब है, भागवतम की किताब कहाँ है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 19 श्लोक संख्या 8 मेरे पीछे बोले। ओह सर्व रसान नद्यः क्षीरदध्यन्न गोरसान तर्वो भूरि वर्ष्माणः प्रासूयन्त मधुच्युतः। ओह सर्व रसान नद्यः क्षीरदध्यन्न गोरसान तर्वो भूरि वर्ष्माणः प्रासूयन्त मधुच्युतः। ओह सर्व रसान नद्यः क्षीरदध्यन्न गोरसान तर्वो भूरि वर्ष्माणः प्रासूयन्त मधुच्युतः। वैष्णव देवियां शब्दार्थ बोलिए। ओहो लाती थी सर्वरसान सभी प्रकार के स्वाद, नद्यः नदियां, क्षीर दूध, दधि दही, अन्न तरह तरह के अनाज, गोरसान अन्न दूध की वस्तुएं, तरवः वृक्ष, भूरी अधिक, वर्षमाणः देहधारी त्रासुयंत फल देने लगे, मधु च्युतहा मधु चुबाते हुए। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, बहती हुई नदियां समस्त प्रकार के स्वाद, मीठा खट्टा चटपटी इत्यादि प्रदान करने लगी, तथा बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल तथा मधु देने लगे। गायें पर्याप्त हरी घास खाकर प्रभूत मात्रा में दूध दही घी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देने लगी। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले एक बार विचार करेंगे शब्दों पर, श्लोक के शब्द किस प्रकार से हैं। यहाँ पर उहू शब्द है, भूपाल लिखते हैं शब्दार्थ में लाती थी, और उहू का एक दूसरा अर्थ है बहा करके लाती, नदियाँ लाती थी कैसे बहा करके बहाती थी, क्या बहाती थी, सर्वरसान सब प्रकार के रसों को, जितने प्रकार के रस जो पीने के लिए होते हैं वो बहा करके लाती थी, नदियाँ बहा करके लाती थी, है ना, कोई जूस की जो है मशीन वगैरह कुछ जरूरत नहीं थी, नदियाँ हैं जो है प्रदान करती थी, नदियाँ प्रदान करती थी, क्षीर दधि अन्न गोरसान, और सब प्रकार के रस के अलावा क्या है, दूध भी और दही भी और अन्न भी, और गोरसान माने अन्न भी, गोरस जितने प्रकार के हैं जैसे घी है और मट्ठा है, है ना, सब प्रकार के गोरस ये नदियाँ बहा करके लाती थी। यहाँ पर इस तरह से बताया गया है, है ना। फिर तरवो भूरी वर्षमाणा, तरवो का मतलब है वृक्ष, भूरी वर्षमाणा का मतलब जो बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं, बड़े शरीर के हो जाते हैं, तो वे जो वृक्ष थे वो क्या करते हैं, प्रासुयंत्र का मतलब है कि बहुत प्रचुर मात्रा में फल प्रदान करते थे, और मधु चुता मधु भी चुबाते थे, शहद भी चुबाते थे, शहद तब काते थे, वृक्ष जो है शहद टपकाते थे, अभी कोई वृक्ष शहद नहीं टपकाता है, वो तो मधुमक्खियाँ हैं वो उसको जो है मुंह में रखती हैं और फिर अपने छाते में जो है उसको इकट्ठा करती हैं, उनका जूठा होता है, है ना, मधुमक्खियों का जूठा, वैसे दूषित नहीं माना जाता, अशुद्ध नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी वृक्षों का जो मधु है वो वैसे ही निकलता था, उनकी कोटर से निकलता था वृक्षों के। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शीला प्रभुपाद की। वैसे यहाँ जो श्लोक है इसमें तो ये बताया गया है कि नदियाँ बहा करके लाती थीं, लेकिन प्रभुपाद इसका जो अर्थ है वो दूसरे प्रकार से करते हैं, क्योंकि ये बातें जो है जल्दी समझ में नहीं आती, तो प्रभुपाद उसको जो है व्यावहारिक तरीके से समझा रहे हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं, यदि नदियाँ प्रदूषित ना हों, नदियों का अगर अपराध ना किया जाए, प्रदूषित ना हों, नदियों को जो है लोग दूषित करते हैं, है ना, विशेष रूप से फैक्ट्रियों का जो अशुद्ध पानी है वो उसमें बहाते हैं, तो नदियाँ अगर प्रदूषित ना हों और उन्हें अपने ढंग से ही बहने दिया जाए, तो नदियों का जो है अलग अलग पानी निकालते हैं ना लोग, है ना, तो सिंचाई के लिए और भी दूसरे कारणों से नदियों का पानी निकालते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि उन्हें अपने ढंग से ही बहने दिया जाए, अथवा कभी कभी भूमि को बाढ़ जल से भरने दिया जाए, नदियों में अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ भी आने दिया जाए, तो भूमि इतनी उपजाऊ हो सकती है कि सभी प्रकार के साग वृक्ष तथा पौधे उत्पन्न होने लगे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जो है दूसरे प्रकार से समझा रहे हैं, क्योंकि सतयुग की जो स्थिति है वो अलग है, सतयुग में ऐसा भी था कि नदियाँ सब प्रकार के रस बहाती थीं, अब ये संभव नहीं है, तो प्रभुपाद दूसरे प्रकार से संभावना बता रहे हैं कि दूसरे प्रकार की संभावना ये है कि नदियाँ प्रदान करेंगे सब प्रकार के रस, कैसे, नदियों के किनारे के जो भूमि वो उपजाऊ हो जाएगी, अगर नदियों को प्रदूषित ना किया जाए और मछली ना मारी जाए, लोग मछली मारते हैं नदियों में, है ना, तो ये सब जो कर्म हैं, दूषित कर्म हैं, अगर नदियों में ना किए जाएं और उनको अपने स्वाभाविक बहाव से बहने दिया जाए तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि भूमि इतनी उपजाऊ हो सकती है, नदियों के किनारे की जो भूमि इतनी उपजाऊ हो सकती है कि सभी प्रकार के साग वृक्ष और पौधे उत्पन्न होने लगेंगे, तो उनसे रस मिलेगा। तो ये इस तरह से भी इसको प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नदियाँ इस प्रकार से भी रस प्रदान करती हैं, है ना, और वो रस जो है बहुत उसमें रस होगा, उसमें विशेष रस की प्राप्ति होगी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, रस शब्द का अर्थ स्वाद है। वास्तव में सभी रस पृथ्वी के भीतर के स्वाद हैं और जो ही धरती में बीज बोए जाते हैं कि विभिन्न पौधे फूटकर बाहर निकलते हैं और हमारे विभिन्न स्वादों की पूर्ति करते हैं। उदाहरणार्थ गन्ने के रस से मीठे स्वाद की तथा संतरे के रस से खट्टे-मीठे स्वाद की। संतरे के रस से खट्टे-मीठे स्वाद की पूर्ति होती है। इसी प्रकार अनानास तथा अन्य फल हैं, साथ ही मिर्च भी है, जिनसे चटपटे स्वाद की पूर्ति होती है। यद्यपि पृथ्वी वही है, तो प्रभुपाद एक दूसरे प्रकार की बात समझा रहे हैं कि पृथ्वी में रस है, पृथ्वी में रस है, सब प्रकार का रस पृथ्वी में है। पृथ्वी में गंध की विशेषता है, पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा, भगवान कहते हैं ना कि पृथ्वी में पवित्र गंध मैं ही हूँ, तो सब प्रकार की सुगंध पृथ्वी से निकलती है, फूलों से आती है, तो फूल वास्तव में वो सुगंध पृथ्वी से ही आ रही है, लेकिन रस तो है ही है कि पृथ्वी में पांचों तत्व हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों हैं पृथ्वी में, है ना, तो पृथ्वी में रस भी। जल में केवल रस है, गंध नहीं है, जल में शब्द स्पर्श रूप रस चार ही गुण हैं, है ना, और अग्नि में तीन गुण हैं, शब्द स्पर्श और रूप, अग्नि में रस नहीं है, गंध नहीं है, है ना, और वायु में केवल दो ही गुण हैं, शब्द और स्पर्श, रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, और आकाश में केवल एक ही गुण है, वो कौन सा गुण है, शब्द, केवल शब्द है, शब्द स्पर्श नहीं है, आकाश में स्पर्श नहीं है, शब्द स्पर्श रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, आकाश में केवल एक ही गुण है, पृथ्वी में पांचों गुण है, है ना, तो प्रभुपाद इस तरह से समझा रहे हैं कि पृथ्वी में ही जो है सब प्रकार के रस होते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि पृथ्वी वही है किंतु विभिन्न बीजों के कारण विभिन्न स्वाद उत्पन्न होते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद्गीता 7:10 में कहा है, बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं सारे अस्तित्वों का मूल आदि बीज हूँ। इस तरह से सभी प्रकार की व्यवस्था रहती है, और जैसा कि ईश्वर ने सद में कथित है, पूर्णम इदम, भगवान ने समस्त आवश्यक वस्तुओं के उत्पन्न किए जाने की पूरी व्यवस्था की है। कैसे श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, है ना, तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो पूर्ण से जो है पूर्ण की उत्पत्ति होती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि चूंकि पृथ्वी भगवान से उत्पन्न हुई है और प्रत्येक लोक जितने भी दूसरे अन्य पृथ्वियाँ हैं जिनको लोक कहते हैं, अलग अलग लोक हैं, तो भगवान से उत्पन्न होते हैं, तो प्रत्येक लोक में भगवान ने समस्त आवश्यक वस्तुओं के उत्पन्न किए जाने की व्यवस्था कर रखी है। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ने समस्त आवश्यक वस्तुओं के उत्पन्न किए जाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है, अतः लोगों को यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना सीखना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति इसमें लगाओ, प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अपनी पूरी शक्ति इसमें लगाओ, मनुष्य जीवन की पूरी शक्ति और पूरा समय इसमें लगाओ, किसमें, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में लगाओ, और सब आवश्यकताएं पूरी होंगी, है ना। तो प्रभुपाद जो बता रहे हैं, है ना, तो ये बात जो है कोई समझ नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, प्रभुपाद जगत गुरु हैं, प्रभुपाद ही बता रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं, अतः लोगों को यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना सीखना चाहिए। यस, और ये आंदोलन जो प्रभुपाद ने जो बनाया है, ये सिखाने के लिए बनाया है कि अपने मनुष्य जीवन की शक्ति और अपना समय किस में लगाओ, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में लगाओ, है ना। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, है ना। और जितने भी कार्य करते हैं सुख प्राप्त करने के, जितने भी कार्य करते हैं उनसे दुखी उत्पन्न होता है, उनके पास समय नहीं इसके लिए, इसके लिए समय नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहे मुझे जड़ में पानी डालने के लिए समय नहीं है, है? और पूरे वृक्ष में सिंचन कर रहा है, एक एक पत्ती को सिंचन कर रहा है ना। कहता मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं, मूर्ख है, है ना। और वृक्ष की जड़ में पानी डालने से प्रत्येक पत्ती में पानी जाएगा, एक एक पत्ती में पानी जाएगा, है ना। उसके लिए समय नहीं उसके पास, है ना। यहाँ पर जो है प्रभुपाद कहते हैं कि यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सब व्यवस्था कर दी है, उत्पन्न होने की व्यवस्था कर दी है, उत्पन्न होगा। सतयुग में ऐसे उत्पन्न होता था सब कुछ, व्यक्ति को कुछ नहीं करना पड़ता था, सब कुछ मिलता था, सब कुछ आता था अपने आप, है ना। अन्न भी नहीं पैदा करना पड़ता था, अन्न भी पैदा होता था अपने आप, सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती, अपने आप सब कुछ होता था, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, निस्संदेह जीवात्मा का प्रमुख कार्य भगवान को प्रसन्न रखना है, क्योंकि जीवात्मा भगवान का ही अंश है, है? अंश है, है और भगवान के पास सब कुछ है, तो अंश को भी सब कुछ प्राप्त होगा कि हमें जुड़ा रहे, भगवान से जुड़ा रहे। तो केवल अपने को जोड़ना है भगवान से, और भगवान का जितना भी सुख है, भगवान की जितनी सुविधाएं हैं वो सब प्राप्त होंगी, है ना। लेकिन हम भगवान से ना जुड़ करके, अलग हो करके अपने सुख सुविधाओं के लिए प्रयास करते हैं, उन्हीं में ही दुख और असुविधाएं मिलती हैं। कितने प्रकार के दुख, कितने प्रकार की असुविधाएं मिल रही हैं लोगों को, लेकिन केवल एक काम वो नहीं करना जानते, क्या? भगवान से जुड़ना, भगवान को प्रसन्न करना, केवल यही नहीं जानते, क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान का अंश है। जैसे कि हाथ है, है ना, फिर शरीर का अंश है, शरीर का एक हिस्सा है, है? तो पेट में भोजन पहुंचाने से इस हाथ को भी शक्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, है ना। हाथ जुड़ा है अगर शरीर से, तो पेट में भोजन पहुंचाने से हाथ को अपने आप शक्ति मिलेगी। ये हाथ जो है अपने आप खाना चाहता है, मैं क्यों पहुँचाऊँ पेट में भोजन, मैं खुद रखूँगा, मैं क्यों पेट को मैं भोजन पहुँचाऊँ और मैं काम करूँ, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, हाथ कहते हैं मैं इतना परिश्रम करता हूँ, है? और पेट क्या करता है, केवल खाता है, ठीक नहीं है, है? मैं खुद जो है अपना फल भोगूंगा, मैं क्यों फल का त्याग करूँ, मैं खुद फल भोगूंगा, मैं कर्म करता हूँ तो मैं कल फल भोगूंगा, मैं क्यों फल का त्याग करूँ, मैं फल भोगूंगा। एक हाथ कहता है मैं कर्म करता हूँ तो मैं ही इसका फल भोगूंगा, मैं ही खाऊंगा, है? दाल सब्जी रसगुल्ला, हाथ कहता है मैं खाऊंगा, है ना। तो ये हाल है, है? तो ही जो है मतलब स्थिति है इस समय की, कि कोई जितनी शिक्षा है सब इसी प्रकार के अज्ञान में है, पूरा ज्ञान है। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि जीवात्मा भगवान का ही अंश है, अतः सारी प्रणाली इस प्रकार व्यवस्थित है कि जीवात्मा उसी तरह कर्तव्य निभाए जैसी कि उसे स्वाभाविक स्थिति प्राप्त है, स्वाभाविक स्थिति प्राप्त है, यानी भगवान ने दिया है, है ना। भगवान ने उसको जैसी स्थिति में रखा है, यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम सुकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने स्वाभाविक कर्म से उसकी पूजा करके व्यक्ति जो है सिद्धि प्राप्त करता है, जीवन की सिद्धि प्राप्त करता है, है? उस ईश्वर से उसे जैसी प्रवृत्ति प्राप्त हुई है, है ना, तो उसी ईश्वर को जो है वो पूजन करे, उसी ईश्वर का पूजन करे अपने कर्म के द्वारा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसी उसे स्वाभाविक स्थिति प्राप्त है उसी प्रकार का कर्तव्य करके वो भगवान को प्रसन्न रख सकता है, है ना। आगे, ऐसा ना करने से समस्त जीवात्माओं को कष्ट उठाना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है, सभी जीवात्माओं को कष्ट उठाना पड़ेगा। आगे, तर्वो भूरी वर्षमाणा, शब्दों से बड़े बड़े और अत्यधिक बढ़े हुए वृक्षों की जानकारी मिलती है, बहुत बड़े बड़े पेड़, अभी आजकल तो बड़े बड़े पेड़ हैं वो सब काटे जाते हैं समाचार पत्र के लिए, समाचार पत्र छापना है, है ना, तो उसके लिए जो है लोग बड़े बड़े पेड़ों को काटते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों का क्या कार्य था, जो बड़े बड़े पेड़ होते थे वो क्या कार्य करते थे, तो वो लिखते हैं इन वृक्षों का कार्य मधु तथा तरह तरह के फल उत्पन्न करना है। तो जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उनसे मधु क्षरण होता है, मधु का क्षरण होता है। आगे दूसरे शब्दों में जंगलों का भी कार्य मधु फल तथा फूल प्रदान करना होता है। दुर्भाग्यवश कलयुग में यज्ञ के अभाव में जंगलों में बड़े बड़े वृक्ष होते हुए भी उनसे पर्याप्त फल तथा मधु प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार सब कुछ यज्ञ पर निर्भर करता है। तो प्रभुपाद क्या करें, यज्ञ के अभाव में ही सब कुछ हो रहा है। अगर यज्ञ हो तो सब कुछ जो है उत्पन्न होगा। आगे इस युग में यज्ञ करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सारे संसार में संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करना है। तो ये जो है मतलब कलयुग का है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में से हमें एक ऐसी दिशा देते हैं कि अब ये जरूरत नहीं है कि हम भी वो यज्ञ करें, अश्वमेध यज्ञ करें। इसलिए प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ये बहुत उपयोगी है। तो श्रीमद् भागवत का वो अध्ययन करे लेकिन उसको फिर व्यवहारिक दिशा कैसे मिलेगी, जब तक प्रभुपाद के तात्पर्य से हमें दिशा ना प्राप्त हो तो हमें दिशा कैसे प्राप्त होगी। कि सतयुग में पृथ्वी महाराज ने यज्ञ किया और वो यज्ञ जो है अश्वमेध यज्ञ किया, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर सोचे कि हम भी अश्वमेध यज्ञ करें तो वो संभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ व्यवहारिक यज्ञ की बात बता रहे हैं। तो अब हम जो है यहाँ समझेंगे फिर से इस श्लोक के शब्दों पर जाएंगे। प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया है। तो सबसे पहला शब्द क्या है, उहू का मतलब है कि बहा करके लाती थी। पृथ्वी महाराज का जो अश्वमेध यज्ञ था उस यज्ञ से इतना बड़ा जो है परिवर्तन हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ पूरी पृथ्वी में। पूरी पृथ्वी के राजा हैं पृथ्वी महाराज, पूरी पृथ्वी के राजा हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं तो पूरी पृथ्वी में पूरी प्रजा को वो फल प्राप्त होता है। सत्युग में ऐसा होता था, सत्युग में ऐसा होता था कि एक व्यक्ति जो कुछ करता है तो पूरे देश को उसका जो है फल मिलता है। एक व्यक्ति जो है गलत काम करे तो पूरे देश को, पूरे राज्य को उसका जो है फल भोगना पड़ेगा, है ना। सत्युग में ऐसा था। और त्रेता में क्या था कि एक व्यक्ति अगर कुछ कार्य करता है तो उसमें बताया गया है क्या, त्रेता में क्या है, पूरी पृथ्वी, हाँ, तो फिर उसका जो है कुछ हिस्सा होता है, सीमित हिस्सा होता है समाज, है ना, तो उसको जो है फल भोगना पड़ता है। और द्वापर में एक व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो उसका जो परिवार है वो उसमें शामिल होता है। और कलयुग में जो व्यक्ति कर्म करता है उसको अपना ही फल भोगना पड़ता है। कलयुग में ये है ना। सतयुग में पूरी पृथ्वी में पूरी पृथ्वी के लोग उसका फल लेते हैं, हिस्सा बढ़ाते हैं और त्रेता में पूरा समाज हिस्सा बढ़ाता है और द्वापर में पूरा परिवार और कलयुग में अपना अपना कर्म, अपना कर्म अपना भोगो, अपना कर्म अपना भोगो, कलयुग में ये है, है ना। तो पृथ्वी महाराज ने जो यज्ञ किया तो उस यज्ञ में मतलब पूरी पृथ्वी में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, ओहू सर्वरसान नद्या, जो नदियां हैं सब प्रकार के रसों को बहा करके लाती हैं, सब प्रकार के रस, है ना। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आप नदी के किनारे खड़े हो जाएं तो आपको नदी के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। किनारे पर ही अगर आप जो है आप चाहते हैं कि आपको चाहिए आम का रस तो नदी में जो है वो किनारे पर ही आपको आम का रस मिलेगा। आप अपना गिलास भर लो और पियो। आम का जूस चाहिए, कौन सा जूस चाहिए, पाइनएप्पल जूस चाहिए, है ना। बिस्लेरी पानी तो कुछ भी नहीं है, बिस्लेरी पानी की तो कुछ भी नहीं है। अभी बिस्लेरी पानी के लिए जो है लोगों को इतनी मशीनें लगानी पड़ती हैं। तो नदियों में बिस्लेरी पानी है अगर आप चाहें तो वो तो कुछ है ही नहीं, बिस्लेरी पानी। आपको कौन सा जूस चाहिए, ओहू सर्वरसान सब प्रकार के रस, नद्या क्षीर, और केवल रस ही नहीं दूध भी, दूध चाहिए तो दूध भी जो है बह करके आएगा और आपको नदियों के बीच में जाने की जरूरत नहीं है कि इधर जाएं उधर जाएं। दूध क्षीर और दही दही चाहिए तो दही भी मिलेगा, अपना पूरा कलश भर के ले आओ दही, नदी से ही ले आओ। अन्न भी है यहाँ, जो है अन्न नहीं है, अन्य गोरसान, मैंने सोचा अन्य हो, अन्य गोरस का मतलब कि दही, दूध और दही तो हो गया, और फिर अन्य गोरस दूसरे प्रकार के भी गोरस हो। गोरस में दूध दही तो है, ऐसा सा और भी दूसरे होते हैं, अन्य नहीं, अन्य है, है ना। तो दूसरे भी जितनी प्रतियां हैं श्रीमद् भागवत की, उनमें यही पाठ है अन्न। तो नदियां अन्न भी प्रदान करती हैं, कितना आश्चर्य है। अगर आपको अन्न चाहिए तो अन्न भी बह करके आएगा, उसको आप कैसे लेंगे, अन्य को कैसे लेंगे। तो मेरे विचार है आप वस्त्र ले लो अपना, तो कपड़े में जो है आप पानी ले लोगे तो पानी निकल जाएगा, अन्न मिल जाएगा आपको। कौन सा अन्न चाहिए, गेहूँ चाहिए, चना चाहिए, क्या चाहिए, है ना। तो उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, पैदा करने की जरूरत नहीं है, नदियों से जो है अन्न भी पैदा मतलब बह करके आता है, और किनारे में ही जहाँ आप खड़े वहीं से ही आप ले सकते हैं। अन्य गोरसान, और फिर गोरस जो दूसरे प्रकार के गोरस हैं दूध और दही के अलावा, घी चाहिए तो घी मिलेगा आपको। उसके लिए आपको पात्र लेना होगा, कोई घड़ा है, कोई बर्तन, तो घी भर लो आप उसमें से, ना मट्ठा, जितने प्रकार के गोरस हैं वो सब आप ले सकते हैं। तो नदियों से आप जो है ये सब प्राप्त कर सकते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ में इतना, ये पृथु महाराज की शुद्धता है, पृथु महाराज की इतनी पवित्रता है, भगवान के प्रति उनकी इतनी समर्पण की भावना है कि इस यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव हुआ। तो पृथु महाराज का ये वास्तव में पृथु महाराज का गुणगान हो रहा है, क्योंकि अध्याय जो प्रारंभ हुआ वो यहाँ से प्रारंभ हुआ है कि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए, और ये कथा मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को, और ये कथा कितनी पवित्र है, इसको सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना बड़ा प्रभाव पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में इतना बड़ा जो है ये प्रभाव हुआ था। तो फिर उनका अश्वमेध यज्ञ कैसा होगा, आप अंदाजा लगाइए कि कैसा अश्वमेध यज्ञ होगा और कैसा भाव होगा। क्योंकि पृथु महाराज को कहा गया है कि वे अर्चना, जो नवदा भक्ति में जो अर्चना विधि है, अर्चन विधि है, तो उसके आचार्य हैं। जैसे बताया गया ना कि नौ प्रकार की भक्ति में अलग अलग भक्तियों के अलग अलग आचार्य हैं, जिन्होंने एक ही प्रकार की भक्ति की और उसी से ही मतलब पूर्ण भगवान को प्रसन्न किया, है ना। यह श्रवण भक्ति, पहले श्रवण भक्ति, उसके आचार्य परीक्षित महाराज, केवल सुना ही उन्होंने, श्रवण ही किया, है ना। तो इसमें ही पूर्णता, पूरी पूर्णता प्राप्त की। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने केवल सुनाया, श्रीमद् भागवत सुनाया, है ना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद महाराज, क्योंकि असुरों के बीच में ना तो कीर्तन कर सकते हैं ना श्रवण कर सकते हैं, वहाँ पर कहाँ मौका मिलेगा। हाँ, कभी मौका मिला कुछ समय के लिए कि जब आचार्य लोग अपने घर के काम धंधों से गए तो कुछ इंटरवल मिला तो बच्चे खेलते थे, उसी में बुला करके कुछ सुनाते थे, है ना। लेकिन फिर ज़्यादा समय मतलब ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि तुरंत हिरण्यकश्यप को समाचार मिल गया। तो स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद महाराज, स्मरणम पाद सेवनम, चौथी पाद सेवन भक्ति है, उसके आचार्य लक्ष्मी जी हैं, हमेशा चरण सेवा करती हैं, पाद सेवन। अर्चनम, अर्चना भक्ति के आचार्य पृथु महाराज। अर्चनम वंदनम, वंदना अक्रूर जी, है ना, अक्रूर जी जा रहे हैं मथुरा से वृंदावन कंस के भेजे हुए, तो यही विचार कर रहे हैं कि मैं भी उसी प्रकार जा रहा हूँ कृष्ण के पास, कंस का भेजा हुआ, जैसे कंस की भेजी हुई पोतना गई थी, अघासुर गए थे, बकासुर गए थे और फिर वापस नहीं आए, मारे गए, तो मेरी भी स्थिति वही है। तो कृष्ण से प्रार्थना करते रहे कि मेरा इरादा ऐसा नहीं है कृष्ण, मेरी आप रक्षा करना, है ना। तो अक्रूर जी जो है वंदना के आचार्य हैं, तो उन्होंने तीव्र भाव से प्रार्थना की, और इतनी प्रार्थना की कि मथुरा से वृंदावन गए तो शाम हो गई, शाम को पहुंचे, क्योंकि रास्ते में इतनी मतलब प्रार्थना करते रहे तो उनको जो है मतलब इतना समय लग गया कि सवेरे से निकले शाम को पहुंचे, गोधूली के समय पहुंचे। तो बंदनम अर्चनम वंदनम
और
दास्यम, दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्यम हनुमान जी कहते हैं कि कोई भी मतलब मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, जिसमें ऐसी कोई मुक्ति मुझे नहीं चाहिए जिसमें कि मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं ये भाव ना हो, ऐसी मुझे मुक्ति की आवश्यकता, मुझे आवश्यकता नहीं है ऐसी मुक्ति की। दास्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम सख्य अर्जुन, अर्जुन है सख्य भक्ति है। सख्यम आत्मनिवेदनम संपूर्ण आत्मसमर्पण कौन है? बलि महाराज है ना। तो पृथु महाराज अर्चना विधि के, तो यहाँ अश्वमेध यज्ञ जो पृथु महाराज कर रहे हैं ये अर्चना भगवान की अर्चना की विधि है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ बताया गया है कि ऊ सर्वरसान नद्या क्षीर दध्यन्य गोरसान, और तरवो भूरी वर्षमाण प्रासु जनते मधुच्युता, और जो वृक्ष हैं वो जब बड़े हो जाते हैं उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर जो है पैदावार में कमी हो, पैदावार उनकी और बढ़ जाती है। भूरी वर्षमाण प्रासु जंत, प्रासु जंत का मतलब कि जितने हैं वो पुराने होते हैं वृक्ष है उतने ही ज़्यादा उनकी जो है पैदावार होती है, वो और ज़्यादा वो पैदा करते हैं, फलों की उत्पत्ति करते हैं और मधु, और उनसे मधु भी निकलने लगता है, शहद भी टपकने लगता है ना। तो ये तो जो है मतलब चर्चा हुई इसकी कि पृथु महाराज का जो है यज्ञ ऐसा था। वैसे बताया गया है कि नदियों में सतयुग में जो नदियां होती थीं उनमें पूरा जल होता था, पूरा जल मतलब 100% जल होता था नदियों में, त्रेता में नदियों में 75% जल रह जाता है और द्वापर में 50% पानी रहता है और कलयुग में 25% पानी रहता है नदियों में। और ये होता किस तरह से है कि सतयुग के प्रारंभ में 100% पानी होता है और सतयुग जब समाप्त होता है और त्रेता युग शुरू होता है तो 75% पानी रह जाता है, है ना। तो कोई परिवर्तन नहीं है ऐसा, क्योंकि वो सतयुग में ही परिवर्तन होता जाता है, जैसे सतयुग बढ़ता है तो नदियों का जल कुछ कुछ कम होता जाता है और जब सतयुग समाप्त होता है और त्रेता युग प्रारंभ होता है तो 75% पानी रहता है नदियों में, और फिर त्रेता युग जब प्रारंभ होता है 75% से तो त्रेता की जब समाप्ति होती है तो 50% पानी रह जाता है, तो द्वापर शुरू होता है और जब द्वापर शुरू होता है तो 50% पानी से शुरू होता है और द्वापर के अंत में 25% पानी रह जाता है नदियों में, और कलयुग जो है कलयुग में 25% से ये शुरू होता है कलयुग नदियों में पानी जो होता है और घटते घटते समाप्त हो जाता है, नदियों में पानी समाप्त हो जाता है आगे चल करके, या कितना पानी होगा कैसा होगा पानी, ये सब जो है कलयुग में पापों के कारण इस तरह की स्थिति होती है। और ये नदियाँ जो है इतनी चीज़ें ला करके देती हैं, है? तो आप क्या सोचते हैं कि नदियों में कोई डूबता था? कोई नहीं डूबता था, कोई ऐसा केस नहीं मिलता था कि भाई कोई डूबा नदी में, नदियों में कोई नहीं डूबता था। ये नदियाँ जब देती हैं इतना देती हैं कि किनारे पर ही आपको सब कुछ प्राप्त होता, अन्न तक देती हैं नदियाँ, है ना, तो डूबाएंगे किसको, कौन डूबेगा नदियों में, कोई अगर जाए भी तो डूब नहीं सकता, वो भी किनारे में आ जाएगा, है ना, वो भी किनारे में आ जाएंगे, जब किनारे में सब कुछ देती हैं नदियाँ ही देती हैं, है ना, आप जो चाहते वो देती हैं, किसको डूबाएंगे, कोई नहीं डूबता था। श्री राम के राज्य में भी ऐसे ही था कि नदियों में कोई नहीं डूबता था, समुद्र में कोई नहीं डूबता था, नदियाँ भी इसी प्रकार से किनारे पर ही सब देती थी, अन्न है अपने तरंगों के द्वारा भी जो है वो निकाल देती थी, रत्न है और कई कई चीज़ें जो है निकाल देती और ज़मीन में डाल देती थी, तो ये जो है कार्य था। अब हम थोड़ा सा सुनेंगे अश्वमेध यज्ञ की विधि क्या होती है, किस तरह की होती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो आप समझिए कि ये अंतिम अश्वमेध यज्ञ था, अभी पृथु महाराज कर रहे हैं 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया तो ये जो है ये समझिए कि अंतिम है। हाँ, उसके बाद राजा जन्मेजय ने भी किया अश्वमेध यज्ञ, है ना, और वो फिर पूरा नहीं हुआ, जो भी हो। तो इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, ये जैमिनी अश्वमेध पर्व में इस तरह से लिखा हुआ है।
युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं व्यास मुनि से, व्यास जी से पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज कि हे महर्षि, अश्वमेध यज्ञ में कितने ब्राह्मण होने चाहिए? अब ये करने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये तो मैं आपकी सूचना की ही बता रहा हूँ। ये भी कृष्ण कथा ही है कि आपको जो है सूचना दी जाती है, अश्वमेध यज्ञ में कितने ब्राह्मण होने चाहिए, इसमें किस प्रकार की दक्षिणा दी जाती है और कैसा अश्व होना चाहिए, इन सब बातों का विशद विवेचन कीजिए। तो व्यास जी ने कहा यज्ञ के प्रारंभ में ब्राह्मणों की संख्या 20,000 बतलाई गई है, 20,000 ब्राह्मण तो प्रारंभ में है ना। ये ब्राह्मण उत्तम कुल में उत्पन्न हो, माननीय हो, बुद्धिमान हो, वेद शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हो, इस यज्ञ में एक एक ब्राह्मण को कितनी दक्षिणा देनी चाहिए ये मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अब सुनिए, एक एक ब्राह्मण को कितनी दक्षिणा, इस यज्ञ में प्रत्येक ब्राह्मण को एक हाथी देना है, एक रथ देना है और सोने से विभूषित एक घोड़ा देना है और 1,000 गौएं देनी है। कितने ब्राह्मण हैं? 20,000 ब्राह्मण हैं। प्रत्येक ब्राह्मण को एक हाथी, एक रथ और सोने से आभूषित एक घोड़ा, 1,000 गौएं और सुवर्ण एक शेर, सुवर्ण युक्त एक शेर रत्न देना है और एक भार सोना दक्षिणा के रूप में देना है। और जिस दिन ये घोड़ा छोड़ा जाता है उस दिन की पहली दक्षिणा है ये। अभी तो ये साल भर कितना होगा, एक साल, ये तो पहली दक्षिणा है। इस प्रकार यज्ञ की दक्षिणा कही गई। अब अश्व का वर्णन करता हूँ, वो घोड़ा कैसा होना चाहिए, गोदुग्ध के समान अथवा कुंद चंद्रमा या बर्फ के समान उज्ज्वल होना चाहिए, उसकी पूंछ पीली होना चाहिए और दोनों कान श्याम रंग के होना चाहिए, श्याम कर्ण घोड़ा, वो सब और जा सके ऐसे उत्तम श्याम कर्ण घोड़े को इस यज्ञ में ग्रहण करना चाहिए। ये यज्ञ शुरू होता है चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को छोड़ा जाता है और बहुत से महाबली योद्धा एक साल तक इसकी रक्षा में नियुक्त रहे, अपने सूरवीर पुत्र को या अपने बांधव को अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। जो यज्ञ करने वाला है वो स्वयं नहीं जाता, जैसे महाराज पृथु यज्ञ कर रहे हैं तो स्वयं नहीं जाएंगे घोड़े की रक्षा के लिए, और घोड़ा पूरी पृथ्वी में भ्रमण करेगा और एक साल में वहीं वापस आएगा, वो घोड़े की जिम्मेदारी है, घोड़े की अपनी जिम्मेदारी है, घोड़े को कोई मतलब चलाता नहीं है, घोड़ा पीछे से चलता है, केवल घोड़े की रक्षा के लिए पीछे पीछे चलना होता है, घोड़ा स्वयं अपनी इच्छा से जाता है, हर स्थान में जाएगा और एक साल में उस स्थान में वापस भी आएगा। वो घोड़ा जो है ऐसा सर्वज्ञ होता है। रक्षा के लिए अपने पुत्र को या बांधव को नियुक्त किया जाता है और जो यज्ञ का अनुष्ठान करता है वो यजमान स्वयं नियम पूर्वक रहकर 80 पत्र व्रत का पालन करे। अब देखिए 80 पत्र व्रत क्या होता है, एक तो 80 पत्र ब्रह्मवन है, वो नरक, एक नरक है जो श्रीमद् भागवत के 28 प्रकार के नरकों में एक 80 पत्र वन एक नरक बताया गया है जिसमें कि पापी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और उसमें बड़े घने मतलब पेड़ होते हैं और जिन पेड़ों की जो है जो पत्ते हैं वो तलवार की तरह होते हैं और यमदूत जब उसको कोड़े से मारते तो भागता है तो पत्ते उसको लगते हैं तलवार जैसी नुकेले पत्ते, उसको जो है पूरे शरीर को छील देते हैं, कटता है उसका पूरा शरीर उन पत्तों के कारण, 80 पत्र वन है। ये 80 पत्र व्रत, 80 पत्र व्रत का पालन करे एक साल तक कौन, यजमान। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, एक वर्ष तक स्त्री समागम के अतिरिक्त अन्य सभी इष्ट भोगों का सेवन कर सकता है। एक साल तक जो करने वाला है वो सब प्रकार के भोग ले सकता है, जैसे खाना पीना हर प्रकार का स्वादिष्ट भोजन कर सकता है, लेकिन एक साल तक क्या नहीं करना है, स्त्री समागम ना करे और पत्नी के साथ एक सैया पर शयन भी करना है, कितना मुश्किल, एक ही सैया पर शयन भी करना है एक साल तक और स्त्री समागम नहीं करना है। 80 पत्र वन, 80 पत्र व्रत है ना, ये है। इष्ट भोगान वर्ष मात्रम सेवेन नारी विवर्जितान एकत्र सेनम कार्यम पत्न्या सह नराधिपै। जब वो घोड़ा पुनः लौटकर जब तक ना आवे तब तक यज्ञकर्ता को चाहिए कि धैर्य के साथ इन सब नियमों का प्रयत्न पूर्वक पालन करता रहे और पृथ्वी के भ्रमण के लिए छोड़ा हुआ घोड़ा जहां जहां विष्ठा या मूत्र का त्याग करे, मल त्याग करे या मूत्र त्याग करे, वहां 1,000 गौएं दान करें। जिस स्थान में कहीं भी मल त्याग करे, मूत्र त्याग करे, तो 1000 गौओं का दान करे, ब्राह्मणों द्वारा हवन कराए, फिर प्रचुर दक्षिणाओं द्वारा उन ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। इसके सिवा राजा एक सोने के पत्र पर अपने नाम और प्रताप के सूचक वाक्य का उल्लेख करके घोड़े के ललाट पर बांधे, उसको भाल पत्र बोलते हैं, घोड़े के माथे पर बांधा जाता है, उसमें ये वाक्य लिखा जाए कि मैंने, मतलब जैसे महाराज पृथु हैं, तो पृथु महाराज ने इस उत्तम अश्व को छोड़ा है, यदि किसी राजा में बल हो तो इसे पकड़ लें, ये उसमें होता है, ये लिखा जाता है, और यदि कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो पराक्रम करके उसको जीतना है और फिर अश्व को वापस लेना है। इस विधि से अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। अशिपत्र व्रत के पालन पूर्वक किए जाने पर यह यज्ञ अधिक फल प्रदान करने वाला होता है। 1 साल तक कोई व्यक्ति अगर पत्नी के साथ ही सोए एक शैया पर और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे तो अधिक फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में इंद्र ने इसी विधि से 100 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें देवराज पद की प्राप्ति हुई और वे स्वर्ग में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। शतक प्रदो उन देवराज इंद्र ने तो अशिपत्र व्रत के बिना ही 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इंद्र से कैसे हो सकता है, इंद्र नहीं कर सकता, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ जो किए है वो अशिपत्र व्रत के बिना ही किए। परंतु उस व्रत के साथ साथ इस अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वो पृथ्वी को समस्त पापों से रहित कर देता है, पूरी पृथ्वी को, जो अशिपत्र व्रत का पालन करके इस यज्ञ को करे है तो वो क्या करता है, पूरी पृथ्वी को समस्त पापों से रहित कर देता है। इतना जो है युधिष्ठिर महाराज ने किया और उनके भी जो है समय पूरी पृथ्वी जो है मतलब पवित्र हो गई, पूरी पृथ्वी को पवित्र किया युधिष्ठिर महाराज ने। तो ये व्यासदेव बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। फिर कहते हैं भीष्म के अतिरिक्त दूसरा कौन मनुष्य है जो कामदेव पर विजय पा सके, इसीलिए कामदेव से भयभीत होकर मनुष्य अशिपत्र व्रत के साथ इस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते हैं, अशिपत्र व्रत के बिना काम करते हैं। यदि तुम कामदेव को जीतने की शक्ति रखते हो तो इस यज्ञ का आरंभ करो, व्यास जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से। तो युधिष्ठिर महाराज ने मतलब ये बात नहीं बताई कि मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब वो कर सकते थे और उन्होंने किया, युधिष्ठिर महाराज ने किया, बल्कि उनकी चिंता थी कि धन कैसे प्राप्त होगा, तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि युधिष्ठिर महाराज ने किया, ऐसा व्रत उन्होंने किया। तो इस तरह से ये जो है अश्वमेध यज्ञ की कुछ विधि की हमने चर्चा की। और प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो व्यवहारिक बात बता रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ जिसके लिए आंदोलन फैल रहा है पूरे संसार में, यज्ञ संकीर्तन प्रायर एजंति ही अश्वमेधसा, कि जो उत्तम बुद्धि वाले लोग हैं ये संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो ये अश्वमेध यज्ञ एक व्यक्ति कर रहा है, पृथु महाराज कर रहे हैं, और वो सबकी जो है कामना पूरी कर रहे हैं, सबकी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, सबको पवित्र कर रहे हैं, है ना। तो ये जो विधि है ये सत्यु की विधि है, लेकिन कलयुग की विधि ये है कि हर व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ में भाग ले, है ना, हर व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ में भाग ले, इसलिए हर व्यक्ति को हम जोड़ते हैं ये संकीर्तन यज्ञ से, है ना। और शलकों में भी जब कीर्तन करते हैं तो वे सुनते हैं, जो लोग सुनते हैं कानों में भी जो ध्वनि जाती है, सब ध्वनि जाती है, तो उनका भी जो है इसमें क्या होता है, भाग हो जाता है, उनका भी हिस्सा हो जाता है, उनको भी हिस्सा मिलता है जो सुनते भी हैं। संकीर्तन यज्ञ में इतना गुण है कि ऊंचे स्वर से जब संकीर्तन किया जाता है तो जिनके कानों में ये आवाज़ पड़ती है तो वे भी पवित्र होते हैं, और इस नाम में इतनी शक्ति है कि कोई अगर ना भी समझे कि ये क्या शब्द है, ये कौन सा शब्द है, ये क्या इसका अर्थ है, कोई अगर नहीं भी समझता है, इस नाम का अर्थ भी नहीं समझता है, तो भी वो पवित्र होता है, उसकी चेतना पवित्र होती है। यहाँ तक कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, जो नास्तिक हैं, वे भी जो है इस नाम का अगर श्रवण करते हैं, सुनते हैं इस नाम को, तो वे भी पवित्र होते हैं। जैसे कि गिरधारी स्वामी बता रहे थे कि चाइना में जो प्रचार किया उन लोगों ने, तो प्रचार इसी तरह से किया, उन्होंने कहा कि अगर हम उनको गीता की शिक्षा दें भगवान के बारे में बताएं। जैसे भारत में आप बताते हैं भगवान के बारे में तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो चीन में अगर आप भगवान के बारे में बताएंगे तो हजारों की संख्या में लोग भागते हैं। सबसे ज्यादा नफरत अगर वो करते हैं तो भगवान से चीन में, मतलब इतने पतित हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गति अन्यथा, अन्यथा गति नहीं है, अन्यथा गति नहीं है केवल हरे नाम। तो हरे नाम फिर भी वहाँ भी काम करता है, उन नास्तिकों के स्थान में भी काम करता है ना। तो नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए, ये भी अपराध है। अश्रद्धालु को नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए, तो नाम की महिमा का उपदेश नहीं करते हैं, लेकिन वे नाम को उपदेश करते हैं मंत्र के रूप में। तो महाराज बता रहे थे कि चाइना में लोगों को जो है हम लोग जब बुलाते हैं तो भगवान की बात नहीं बताते कुछ भी, हम उनको बताते हैं कि आओ हमें हम आपको कुछ आसन सिखाएंगे जिससे कि शरीर स्वस्थ हो जाए, तो इसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो उनको कुछ आसन सिखाते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि हम ये मंत्र आपको सिखाते हैं जिससे मन का दिमाग का तनाव दूर हो जाए, तो वो कहते हैं हाँ ये ठीक है। तो उनको हरे कृष्ण मंत्र बताते हैं, ये नाम नहीं बताते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बताते हैं कि दिमाग का तनाव दूर हो जाए। तो दिमाग का तनाव दूर करने के लिए कहते हैं ये जो है 32 अक्षर हैं और 16 शब्द हैं, इनका जो है जप करो। और इसी से जब उनकी चेतना पवित्र होती है तो उनको फिर गीता की शिक्षा दी जाती है और वो जो है सुनते हैं और तैयार हो जाते हैं फिर सुनने के लिए, है ना। हरि बोल। ये जो है शक्ति है नाम में, ऐसी शक्ति है जैसे कि वाल्मीकि मुनि को भी नारद जी ने कहा मरा मरा कहने के लिए, तो मंत्र दिया, नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनकी भी स्थिति ऐसी थी, रत्नाकर नाम के डाकू थे, कि वे जो है ईश्वर में उनकी श्रद्धा नहीं थी, तो अपराध करेंगे, तो अपराध से बचाने के लिए उनको क्या दिया, मंत्र दिया कि मरा मरा बोलो, है ना। ये कहना ठीक नहीं कि वो पापी थे इसलिए राम नहीं बोल सकते थे, ऐसा नहीं है। कोई पापी राम क्यों नहीं बोल सकता, लेकिन अगर अपराध करता है तो जो है उसको जो है ये मंत्र दिया जाता है। और हम लोग ही उच्चारण करते हैं मंत्र के रूप में ही उच्चारण करते हैं, उनकी शब्द ध्वनि सुनिए इसी से पवित्र होंगे। तो शब्द ध्वनि जो है इतनी शक्तिशाली है कि हम सुनने मात्र से पवित्र होते हैं, तो हम जो है बोलते हैं इसको सुनते हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँगा। हाँ जी, इनको हैंड माइक ये चालू कर दिया है, आप बोलिए। चालू हो गया, चालू हो गया।
जी मेरा प्रश्न था कि जैसे बताया कि पृथ्वी में रूप रस समान स्वाद है और शब्द है, तो रूप रस समान स्वाद तो क्या है, शब्द क्या है, क्या बताया कि आकाश में केवल शब्द है।
आकाश में केवल शब्द है, आकाश में केवल शब्द का ही गुण है। आकाश में शब्द है, जैसे मान लीजिए इस माइक का जो है अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दें तो मैं नहीं बोल रहा हूँ तो भी उसमें आवाज़ निकलती है माइक से। क्यों निकलती है? कि आकाश के शब्द को पकड़ता है, आप समझ रहे। वैसे आपके कानों में आकाश का शब्द नहीं सुनाई पड़ता, ये माइक जो है अगर ज़्यादा आप वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, आप समझ रहे हैं, तो आकाश का जो शब्द है उसी को पकड़ता है और आती ना इको, तो क्यों आती है? अभी मतलब मान लीजिए कि कोई नहीं बोल रहा है, बिल्कुल ऐसे रख दिया माइक ऐसे, ठीक है, और इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो क्या करता है माइक? आकाश के शब्द को पकड़ता है, आकाश में शब्द है, ठीक है। तो आकाश की पहचान जो है शब्द से होती है, आकाश में शब्द है, लेकिन शब्द के अलावा दूसरे गुण नहीं, स्पर्श नहीं है आकाश में, स्पर्श नहीं है, आप स्पर्श से अनुभूति नहीं कर सकते आकाश की, स्पर्श नहीं है और शब्द स्पर्श, रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, ठीक है ना। और फिर वायु आकाश से उत्पन्न होता है, वायु है ना, आकाश से शब्द उत्पन्न होता है, शब्द से वायु उत्पन्न होती है, हैं, तो वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। तो हवा चलती है तो आवाज़ भी होती है हवा में, और स्पर्श भी, स्पर्श का भी अनुभव होता है, हवा कैसी है, ठंडी है, गर्म है, है ना, कठोर है, कोमल है, तो स्पर्श का अनुभव होता है। तो वायु में शब्द और स्पर्श दोनों गुण हैं, ठीक है। और सब वायु से जो है जो स्पर्श का गुण हुआ, स्पर्श गुण से इसमें अग्नि उत्पन्न हुई, तो अग्नि में शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है, अग्नि की पहचान कैसे होती है? शब्द से भी होती है, चट आवाज होती है अग्नि में है? और स्पर्श तो है ही, पता चल जाएगा आप, अरे छुएंगे है ना, स्पर्श भी है, शब्द स्पर्श रूप भी है, दिखाई भी पड़ती है अग्नि, तो इसमें जो है तीनों, लेकिन रस नहीं है, गंध नहीं है, है ना। फिर अग्नि से जो रूप उत्पन्न हुआ, रूप से फिर जल की उत्पत्ति हुई, तो जल में शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है, और विशेष गुण क्या है? रस, है ना। तो जल की पहचान आपको जो है शब्द से भी होती है, आवाज होती है पानी में, और शब्द स्पर्श, स्पर्श भी होता है पानी में, कभी गर्म है ठंडा है, है ना। शब्द स्पर्श रूप, रूप भी है दिखाई पड़ता है, और रस भी है। और जल से जो रस उत्पन्न हुआ, रस से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है विशेष, जो बाकी चार तत्वों में नहीं है। गंध की जो विशेषता है ये अन्य तत्वों में नहीं है, पृथ्वी में ही है गंध की विशेषता। तो पृथ्वी में शब्द भी है और स्पर्श भी है और रूप भी है और रस भी है और गंध भी है, पांचों गुण है, ठीक है। अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि पृथ्वी में शब्द का पता कैसे चलता है? पृथ्वी में शब्द का पता देखिए, पृथ्वी में शब्द का पता चलता है, चलता है ये पृथ्वी में शब्द का पता चलता है, तो शब्द से ही पृथ्वी की पहचान होती है, ठीक है। तो पृथ्वी में शब्द ऐसी, आप ऐसी देख लीजिए, भूकंप आने की जरूरत नहीं कि भूकंप से आपको पहचान होगी पृथ्वी तत्व है, भूकंप की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप वैसे ही पता चल जाएगा शब्द का, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ इधर, अच्छा उधर भी हाथ है, तो पहले कौन करेंगे? यहाँ भी है, चलो फिर इधर जो निकट के हैं, फिर मधुसूदनर भी हैं और इधर भी हैं, अच्छा माइक इधर है, चलो फिर अभी, अच्छा हैगिरी प्रभु हैं।
और रहने का, वस्त्र का, भोजन का कोई अभाव नहीं है, तो श्रीमद् प्रभुपाद जी प्रभु महाराज की तरह
हरे बोल, हरे बोल। अच्छा अब आपका इनको दीजिए माइक।
और दूसरी बात है, आजकल गाय का दूध नहीं मिल रहा है, भैंस का दूध, और भक्तों को ये कहा जाए कि राम जी की दर्शन चेक कर लेंगे, जर्सी गाय का दूध लेके नहीं, जर्सी गाय का भैंस का दूध, भैंस का दूध मानव पास भैंस देखे भक्त जाए
देखिए चैतन्य महाप्रभु के समय में संकीर्तन आंदोलन जब फैला था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उस मुसलमानों के शासन में ही ये संकीर्तन आंदोलन फैलाया था, और शासन को नहीं बदला, और मुसलमान लोग तो गौ हत्या करते भी थे, चैतन्य महाप्रभु ने भी इस बात के लिए शोक किया कि ये गौ हत्या करते हैं, इनकी कैसे इनकी रक्षा होगी, कैसे संगति होगी, तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हराम बोलते हैं, अगर अपने धर्म की और दूसरी बातों को अगर ये मानते हैं तो हराम शब्द भी बोलते हैं किसी शास्त्र विरुद्ध कार्य को, तो उससे भी इनकी रक्षा हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन को ही फैलाया, तो हमें पूरी शक्ति संकीर्तन आंदोलन को फैलाने में लगानी चाहिए। इससे क्या है कि सब कार्य अपने आप होंगे। अगर आप संकीर्तन को फैलाते हैं तो सब प्रकार से जो है विकास होगा, जो सही दिशा में हर प्रकार के कार्य होंगे। आप जो है मतलब गोरक्षा के लिए अलग से अपनी शक्ति लगा रहे हैं, हैं मानी लगा रहे हैं, लेकिन कितने विरोध होंगे, कितना विरोध होगा, और अंत में वो फिर से शुरू हो जाएगा, वही काम शुरू हो जाएगा। तो प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं ये अगर हम बांटते हैं तो इनके द्वारा व्यक्ति को दृष्टि मिलती है कि अगला जीवन है और मुझे ये कर्म लेके जाना पड़ेगा, इसका मुझे फल भोगना पड़ेगा। तो गोहत्या और पशु हत्या और जितने प्रकार के व्यभिचार मांसाहार ये सब काम अपने आप बंद हो जाएंगे। संकीर्तन आंदोलन हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, उनकी चेतना पवित्र होती है और इससे प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा और इसी से जो है सब कार्य अपने आप होंगे। आपको इसमें ज़्यादा शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। तो बात यही है कि संकीर्तन आंदोलन में आपकी इतनी मतलब श्रद्धा होनी चाहिए कि इसी से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपको ये विश्वास करना चाहिए। और नहीं तो हम एक दिशा में आप कार्य कर रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं और मान लो कुछ सफलता मिली और फिर से वो फिर से उल्टा काम शुरू हो जाएगा। हर दिशा में यही है। कितने हैं आप, जैसे गंगा जी को अशुद्ध कर रहे हैं लोग, जमुना जी को, तो उनका जो है मतलब उस प्रदूषण को रोकने के लिए आप अपनी शक्ति लगा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, गोहत्या का विरोध कर रहे हैं, कितने कितने प्रकार के उल्टे कार्य हो रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक कार्य अगर आप जो है प्रमोट करते हैं, इसको ही प्रोत्साहन करते हैं कि संकीर्तन आंदोलन को प्रोत्साहन करते हैं, तो सब कार्य अपने आप होंगे। चैतन्य महाप्रभु ने शासन नहीं बदला, मुसलमानों का शासन नहीं बदला, है ना, लेकिन केवल संकीर्तन आंदोलन फैलाया और संकीर्तन आंदोलन से गऊओं का और ब्राह्मणों का विकास हुआ, उनकी वृद्धि हुई और उनका जो है सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ। तो संकीर्तन आंदोलन में नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा, गऊओं के ब्राह्मणों का हित भी इसमें होगा चाहे हम ना समझ पाए। जैसे आप जल में जड़ में आप जल डालते हैं तो आप समझें या ना समझें, ये कैसे होता है कि पूरा जो वृक्ष है वो हरा भरा होता है, है ना, और जो है फलित होता है, पल्लवित होता है। तो उसी प्रकार से संकीर्तन आंदोलन में ये शक्ति है कि हम नहीं समझ पाते, ये हर क्षेत्र में जो है ये पवित्रता आती है, हर क्षेत्र में पवित्रता आएगी, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब इसको ज़्यादा महत्व दिया कि हम जो है केवल एक ही दिशा में मतलब कुछ विरोध करते रहें और इसमें जो है अपनी शक्ति लगाएं तो उससे उतना लाभ नहीं है, परिश्रम ज़्यादा है उतना ज़्यादा लाभ नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आपका प्रश्न। युधिष्ठिर महाराज के बाद इनका प्रश्न है कि किसी ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। हाँ, किसी ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, आगे चलकर के महाराज जनमेजय ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं आई कि वो फिर पूरा नहीं कर पाए, अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए। नहीं, बाद युधिष्ठिर महाराज के बाद में कह रहे हैं ना, श्री राम तो बहुत पहले के हैं। आप इनका प्रश्न है, मधुसुंदर प्रभु बाद में, ठीक है, आप धैर्य धारण करें। हाँ जी, चालू है, चालू है। हाँ, हाँ, तो इसका जो है मतलब हमें संग नहीं करना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि संग असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, आपको संग त्याग करना ही पड़ेगा। अगर आप संग करते हैं तो आपको लेना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं, अगर आप संगति करते हैं असत व्यक्ति की तो आपको लेनी पड़ेगा। आप प्रचार में जाते हैं तो आप अपना काम करिए प्रचार का, उनकी बातें नहीं सुनिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो हैं? तो वो जो है अपनी बातें सुनाने लगे। आपको इतना सावधान होना चाहिए कि आप अपना संग दीजिए उनको या उनका संग ना दीजिए, उनका संग मत लीजिए। तो मधुसूदन प्रभु जैसे हैं तो वो पुस्तक वितरण का है, अपना मतलब पूरा उनकी सेटिंग रहती है कि कैसी किताब दें, है ना। तो इस तरह से बात को मोड़ते हैं, घुमाते हैं कि किताब वो ले लें किसी प्रकार से। तो ये जो है अपने पास इतनी योग्यता होनी चाहिए प्रचार में कि आप फंसे नहीं, कि उसकी बातों में आप फंस गए तो आपने उसका संग ले लिया तो आप भी अशुद्ध हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो संघ तो आपको जो है मतलब त्यागना पड़ेगा है। पहले ये था कि पूरे राज्य में एक व्यक्ति जो है कोई कार्य करता था, पूरे राज्य में उसका जो है वो असर पड़ता था, क्योंकि वो संगठित था, इतना संगठित था राज्य कि एक कार्य हो जाए तो पूरे राज्य में उसका समाचार फैल जाता था बिना मीडिया के, क्योंकि लोग एक दूसरे से बोल करके ही पूरे राज्य में समाचार फैल जाता था बिना मीडिया के, है ना, क्योंकि लोगों का इतना मतलब वो था, संघ था। तो इस कारण से आखिर है तो संगति ही है ना। अब वो त्रेता युग में समाज में इतना संगति थी कि कोई भी कार्य हो पूरा फैल जाता था, तो सब जुड़े होते थे ना इस तरह से। तो मुख्य सिद्धांत ये कि आप किससे जुड़ते हैं, अगर आप भक्त से जुड़ते हैं तो आपको उसका जो है फल मिलेगा, अभक्त से जुड़ते हैं तो उसका फल मिलेगा। तो आपको अपना संग जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। मधुसूदन प्रभु हैंड माइक दीजिए। और पीछे
कृष्ण किसी ने जो आपने कर्म बताया है कर्मों का, तो भक्ति जो बताते हैं उसमें भी कर्म बताया है।
हाँ, यहाँ पर जो है मतलब मुख्य बात यही संगति की बात है कि राजा जो है अगर भक्त है तो प्रजा भी भक्त बन जाती है, प्रजा में भी पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे श्री राम ने जब वनवास ग्रहण किया, वनवास स्वीकार किया, जबकि वो युवराज पद पर आसीन थे, तो इससे कितना असर हुआ कि पूरी प्रजा जो है पूरी प्रजा ने अपने भोगों को त्याग दिया। अब वो प्रजा कैसे भोग करे, और भरत महाराज को राज्य बनाया तो वो भी राज्य आसन पर नहीं बैठ रहे हैं, सिंहासन पर नहीं बैठ रहे हैं, और वे भी जो है बलकल वस्त्र धारण कर रहे हैं, और वे भी जो है बड़ा मतलब ऐसा भोजन कर रहे हैं कि कोई खा नहीं सकता, जवा जो कि गाय को खिला देते हैं उससे, फिर उसके गोबर से जो निकलता है उसको खाते हैं। तो इतना मतलब उन्होंने त्याग किया तो पूरी प्रजा में इतना प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से जो है कोई व्यक्ति अगर ऐसे कर्म करता है, मुख्य बात तो संगति की ही है कि आप संग कर रहे हैं, है ना। तो एक व्यक्ति के कर्म का जो असर है वो पूरे राज्य में पड़ता है। सत्युग में ये था कि पूरे राज्य में एक व्यक्ति के कर्म का, क्योंकि यहाँ पर संगति है, और फिर उसको अगर दंड दिया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, तो जो है फिर आप फिर किसी को कर्म नहीं लगता। तो ये बहुत आवश्यक है कि उसको दंड दिया जाए, उसका विरोध किया जाए, कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत काम कर रहा है, तो ये मतलब विधि है इस तरह की, ठीक है। धर्मनारायण धर्म यहाँ माइक
भी
नहीं, ये भी जो है इसमें भी बड़ी शक्ति है। भक्ति से थान सरती ठाकुर ने जब 100 करोड़ नाम लेने का व्रत लिया था, तो 10 साल में उन्होंने 100 करोड़ नाम पूरे किए थे। तो इस संकल्प से उन्होंने किए थे कि ये नाम जो है पूरे संसार में फैले, तो उनका जो है संकल्प था इस प्रकार का कि फैले चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी है ना, तो वो भविष्यवाणी पूरी हो। तो उन्होंने भी अपनी संकल्प शक्ति लगाई, इस तरह से नाम लिया, तो इस तरह से जो है मतलब प्रभुपाद सफल हुए। तो इस तरह से भी कोई व्यक्ति कर सकता है। आप किसी के लिए कीर्तन करते हैं, किस प्रार्थना करते हैं, तो कभी हम जय पताका महाराज के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये भी जो है मतलब काम करता है। इस तरह से भी आपका जो है जो भजन है वो किसी के लिए भी आप करते हैं तो कुछ हद तक काम करता है, ठीक है। हाँ जी, थोड़ी देर लगे, थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ,
अरे परिवारजन को उसके गांव वालों को भी यहाँ तक बोलना पड़ता है। जैसा नहीं करता उसमें प्रसंग आता है, रामचंद्र खान ने नित्यानंद प्रभु की अपमान किया था, उसकी वजह से उसके पूरे परिवार को और उसके पूरे गांव वालों को उसका फल भोगना पड़ता है। तो उसमें कृष्णदास बता रहे हैं कि वैष्णव अपराध इतना भयानक में होता है कि अगर कोई वैष्णव अपराध करता है, किसी वैष्णव का अपराध करता है, तो उसका फल पूरे समाज को भुगतना पड़ता है उसको।
नहीं, इसमें ये समझना पड़ेगा इसमें कि कुछ सूक्ष्म बातें हैं, जैसे कि द्रौपदी का अपमान हो रहा था सभा के बीच में, तो विदुर जी थे, तो विदुर जी ने समर्थन नहीं किया और विदुर जी ने विरोध किया, तो भगवान आए जब तो विदुर जी के ही घर में ठहरे, विदुर जी घर में ठहरे, तो वो थे विदुर जी वहाँ पर हैं, और विदुर जी को आज्ञा दी दुर्योधन ने कि विदुर तुम लेके आओ द्रौपदी को यहाँ, तो उन्होंने डांट करके कहा कि मैं नहीं जा सकता, मैं क्यों जाऊँगा। वैसे तो दुर्योधन जो है मतलब अपने को सोचता है कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, ये दासी पुत्र हैं, दासी के पुत्र हैं, तो विदुर जी ने डांट करके बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। और जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो सभा के बीच में उन्होंने विरोध भी किया, तो अगर आप विरोध करते हैं और उसमें आप सहयोग नहीं देते हैं और इस तरह से अगर आप रहते हैं तो जो है आपको फिर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप विरोध करते हैं, आपके सामने हो रहा है, तो आप जो है इसमें सहभागी हैं।
यानी कि आपने कलयुग में भी अगर आप अनिष्टापूर्वक जुड़े हैं किसी से तो उसके कर्मों का असर पड़ेगा, तो अच्छा हो या बुरा हो, जिस प्रकार से गुरु के पुण्य का प्रभाव सिस्टम में पड़ता है।
हाँ, तो हमें जो है मतलब संग का जो है बहुत ध्यान रखना है कि हम किसका संग कर रहे हैं, और आपके संग में है कोई व्यक्ति, आप उसको फिर भी आश्रय देते हैं अपराध करने का, उसका समर्थन करते हैं, और समर्थन नहीं करते हैं तो विरोध भी नहीं करते हैं, तो फिर जो है उसका असर पड़ता है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए इसके लिए कि हम बचें। 10 नाम अपराध हम जब बोलते हैं तो हमें मतलब ये प्रार्थना करनी चाहिए कि 10 अपराधों से हम बचें, हमारी कैसे रक्षा हो। तो ये जो है हमारी नाम प्रभु से प्रार्थना होती है कि कई बार हम नहीं जानते हैं लेकिन अपराध होता है, और कैसे अपराध होता है, हमारे अंदर तो बहुत कमियां हैं, तो अपराध होता है, कई प्रकार से अपराध हो सकता है, हम नहीं भी जानते तो भी अपराध होता है नाम का। तो नाम प्रभु जो है हमको 10 अपराधों से बचाएं, ये भी हमारी प्रार्थना नाम से होना चाहिए। तो हम जब 10 अपराध बोलते हैं तो हमारी चेतना में ये भी एक प्रार्थना होनी चाहिए कि हम 10 अपराधों से हम कैसे बचें। हम जानबूझ करके भी अपराध करते हैं और अनजाने में भी अपराध करते हैं, तो हमसे ना हो, जानबूझ करके भी अपराध ना हो, अनजाने में भी अपराध ना हो, इन 10 अपराधों से कैसे बचें, ये हमारी चिंता और प्रार्थना होनी चाहिए। हाँ जी, बक्रेश्वर प्राण हैंड माइक दीजिए। अंतिम प्रश्न है, चालू है क्या, बंद कर दिया था?
अच्छा, मैंने करने बारे में बताया जो सूचना बहुत अच्छा लगा, इसमें एक सूचना तो आती है उसको जो नियम पालन करना पड़ता है, एक साथ दुखी खाए कुछ कर, लेकिन जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का पालन करता है तो उसको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। इस तरह जो हम भक्ति योग में हमारे जो चार नियम है, चार नियम पालन करते हैं, ब्रह्मचारी को दुरुस्त हो, जब उस परस्ती गम होता है कोई गलती से करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम हो के भी गृहस्थ आश्रम हो के भी यम के हिसाब से आया नहीं करता है, वो फिर भी भक्ति करता है, वो सोचता है नाम के तौर पर सप्तम अपराध है, नाम के तौर पर पाप करना, किसी भाव से नाम अक्षर अपराध करते हुए भक्ति करता है, तो उसको क्या स्थिति मतलब क्या मिलेगा उसको भक्ति योग में भक्ति करने का?
देखिए, अपराध जो है अगर नाम का अपराध होता है तो वे हमारे पाप नष्ट नहीं होते। अपराध को ऐसा कहा गया है कि ये पानी की तरह है, और जो पाप है वो सूखा ईंधन की तरह है। ये सूखा ईंधन है, जैसे रुई का ढेर है, तो थोड़ी सी भी चिंगारी उसमें लग जाए तो पूरा रुई का ढेर, पर्वत के समान भी रुई का ढेर है, वो भस्म हो जाएगा। तो नाम जो है वो अग्नि है जो रुई के ढेर को भस्म करती है, वो पाप जो है रुई के ढेर के समान है। लेकिन अपराध क्या है? पानी, आपने पानी डाल दिया, अब रुई के ढेर में पानी डाल दिया, गीला हो गया सब रुई, अब क्या होगा? नहीं जलेगा। ईंधन है तो आग की शक्ति अब जो है नहीं रही, उसको जलाने की, तो हमारे पाप फिर नष्ट नहीं होते हैं। अगर हम अपराध करते हैं तो हमारे पाप नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए अपराधों से बचकर के हमें करना है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबूतना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तो कृष्ण के चरणों में प्रेम धन नहीं प्राप्त करता है। अब अपराध कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके अनुसार उसको नरक की भी प्राप्ति हो सकती है, या नरक की प्राप्ति ना हो तो भी उसको दंड मिलेगा, उसको जो है नीची योनियों भी जा सकता है, या निम्न योनियों भी ना जाए मनुष्य योनि मिले तो भी उसको कई तरह के कष्ट प्राप्त होंगे मनुष्य योनि में भी, या देवता की भी योनि अगर प्राप्त हो स्वर्ग में जाए तो वहाँ भी कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। स्वर्ग में भी सुख मिलता है लेकिन कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, स्वर्ग में भी ब्रह्मलोक में भी कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, आ समझ रहे हैं? तो बाधाएं तो आएंगी क्योंकि नाम का अपराध किया है उसको बाधाएं आएंगी, लेकिन अपराध की कैसी स्थिति है उसके अनुसार नरक में भी जा सकता है स्वर्ग में भी जा सकता है कहीं भी जा सकता है कैसे। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अब किसी का प्रश्न है तो अलग से प्रश्न कर सकते हैं।
मुझे पाप करते हैं या फिर हो जाता है कभी कभी, या फिर अपराध हो जाता है, हमना करते हुए भी हो जाता है, ये तो माया रूप की पाप है, अंधकार है जो हमारे मन को अपनी को विचलित कर दिया। दो तीन कर पाते हैं, तीन चीज बढ़ाओ,
ठीक है, इसी को बढ़ाओ, थोड़ा माना
पैसा, ये तो तीर में दर्द से जगह करता हूँ।